ऑस्ट्रेलिया भर में वृद्ध देखभाल सेवा प्रदाता फेडरल सरकार और राष्ट्रीय कैबिनेट से इस क्षेत्र में ओमिक्रॉन के प्रसार को रोकने के लिए तत्काल कार्य करने का आग्रह कर रहे हैं। अकेले पिछले महीने में वृद्ध देखभाल गृहों में 399 लोगों की मृत्यु हुई है। ये पूरी महामारी के दौरान वृद्ध देखभाल में दर्ज कुल मौतों का लगभग 30% है। क्रिसमस और नए साल की अवधि में वृद्ध देखभाल क्षेत्र के लिए अपेक्षाकृत शांत समय की आशा होती है, लेकिन ओमिक्रॉन के मामले पूरे समुदाय में व्यापक रूप में फैलने से 2022 का पहला महीना वृद्ध देखभाल निवासियों के लिए घातक रहा है। 2021 के पूरे वर्ष में 282 वृद्ध देखभाल निवासियों की मृत्यु हुई, लेकिन इसकी तुलना में इस वर्ष अकेले जनवरी महीने में ही 28 जनवरी तक वृद्ध देखभाल घरों में 399 मौतें दर्ज की गईं। वृद्ध देखभाल सेक्टर में वर्तमान में 9643 निवासी और 14257 कर्मचारी COVID-19 से संक्रमित हैं। एज्ड एंड कम्युनिटी सर्विसेज ऑस्ट्रेलिया के CEO पॉल सेटलर का कहना है कि ये सब विनाशकारी रहा है।
What's happened is Omicron spread so widely through the broader community that it has infected residents who were out seeing their families. It has infected the staff and the family members. And it has then entered nearly 3/4 of all of the aged care homes across Australia. So it really has overwhelmed the aged care system in a way that the earlier waves, Alpha in 2020 and Delta in 2021, didn't do.
अब वृद्ध देखभाल क्षेत्र की जिम्मेदारी फेडरल सरकार पर है। उसका कहना है कि उसने PPE यानी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की निरंतर आपूर्ति और वृद्ध देखभाल घरों के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट सुनिश्चित करने के लिए काम किया है। फेडरल स्वास्थ्य मंत्री ग्रेग हंट का कहना है कि कार्यवाही की गई है।
At the Commonwealth level, we've already delivered over 9.2 million rapid antigen tests directly, of which 7.6 million have gone to aged care continuously and consistently since August of last year. We're always looking at continuous improvement. And that's what we've done throughout the pandemic, whether it was closing the borders, the work being done in relation to procuring PPE or right through the course of it. So there's continuous learning and engagement.
और श्री सेडलर का कहना है कि आपूर्ति के समय और उसकी मात्रा में अभी भी खासा अंतराल है, जिसका अर्थ है कि केवल वृद्ध देखभाल कर्मचारियों के एक हिस्से का तो परीक्षण किया जा सकता है और इसकी वजह से वृद्ध देखभाल निवासियों में COVID-19 होने का अधिक खतरा हो जाता है। इस बात की भी चिंता है कि वृद्ध देखभाल गृहों में बूस्टर वैक्सीन का रोल आउट बहुत धीमा रहा है। न्यू साउथ वेल्स में, जिसमें 555 वृद्ध देखभाल घरों में सबसे अधिक प्रकोप है, इस मुद्दे को घातक आंकड़ों में दिखाया गया है। लीडिंग एज सर्विसेज ऑस्ट्रेलिया के CEO शॉन रूनी कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ओमिक्रॉन के एक नए उपसंस्करण BA2 के अधिक मामलों को देखा जा रहा है और इसलिए इस क्षेत्र में बूस्टर वैक्सीन के लिए रोल आउट में तेजी लाने की तत्काल आवश्यकता है।
The federal government has been running a booster program that sees vaccination teams visit every aged care home to offer the booster to aged care residents. Now, as the last report I heard is that every aged care home will have had at least one visit from those vaccination teams by the end of next week. What we have heard, though, is that the uptake of some residents in some locations has been lower than we would have liked. We'd like to see more residents taking the booster when it is made available to them. And then we look to the staff. We know we have 99% plus of staff in aged care homes vaccinated. We want to see them prioritised for the booster programs.
उनका कहना है कि 15 से 30 प्रतिशत कर्मचारी काम करने में असमर्थ हैं, क्योंकि वो या तो कोविड से संक्रमित हैं या कोविड मरीजों के निकट संपर्क हैं। और उनका कहना है कि कठोर उपायों पर विचार करने की आवश्यकता है और इसमें ऑस्ट्रेलिया रक्षा बल के कर्मियों की सहायता ली जानी चाहिए।
Call on the government to find a solution. We recommended looking for the Australian Defence Force to be able to help plug those gaps, because what happens is all the pressure then falls back onto the current workforce, where they are doing those double shifts, where they are pulling out all stops to be able to keep people safe. But it's unfair when it falls on the shoulders of those few, when we were given assurances that there would be surge workforce, that there would be adequate supplies of PPE and rapid antigen tests available, so we wouldn't be in this situation.
उन्होंने COVID-19 की चल रही लहरों और वृद्ध देखभाल पर इसके प्रभावों से निपटने के लिए एक अधिक समन्वित राष्ट्रीय रणनीति विकसित करने के लिए राष्ट्रीय कैबिनेट का आह्वान किया। श्री सैडलर का कहना है कि वृद्ध देखभाल वर्कर्स के लिए मजदूरी के मुद्दे की समीक्षा की जानी चाहिए, जिसमें समय सीमित समर्थन भुगतान भी शामिल है।
And we need to recognize the toll this has taken on aged care staff. You are having to wear gowns and goggles and face masks and so on. There's a whole extra layer of activity that staff are having to go through in order to prevent the spread of the disease and look after older people. But what I should say is we have a broader issue about the pay rates for aged care workers. Their wages are less than those in retail, in health or in disability, and older people and the people who work for them deserve better than that.
ये वृद्ध देखभाल सेवा प्रदाता समूह वृद्ध देखभाल क्षेत्र के लिए शीर्ष प्रतिनिधि हैं। चार अन्य समूहों के साथ वो ऑस्ट्रेलिया में 70% वृद्ध देखभाल सेवाएं प्रदान करने वाले 1000 से अधिक संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। SBS न्यूज के लिए बीवा क्वान की इस रिपोर्ट को SBS हिंदी के लिए प्रस्तुत किया अनीता परार ने।